श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 24 श्लोक संख्या 35 दिनांक 11 अगस्त 2015 स्पीकर इज ग्रेस कमल लोचन प्रभु।
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। अभी श्री सुखदेव गोस्वामी बाद वर्णन कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण का आदेश सुनने के बाद गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने लगे, कृष्ण की आदेश तुरंत पालन करने लगे। और कैसा उन्होंने उन ब्रजवासियों ने उनका आदेश पालन किया, उसका वर्णन इन श्लोकों में हो रहा है, यानी 30वां श्लोक से इस प्रकार की वर्णन हो रहा है। ये श्लोक सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कैसे ब्रजवासी बड़े आनंद के साथ, उनके हृदय में जो भय छुपा हुआ था कि अगर इंद्र का पूजा नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा, इस भय को निकालने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, उसका वर्णन आता है। 34वां श्लोक का तात्पर्य नहीं होने के कारण 34वां श्लोक को भी थोड़ा सा चर्चा करने के लिए प्रयास करेंगे। 34वां श्लोक का वर्णन हुआ है, अन्यांसि अन्युः युक्तानि ते चार्युः स्वलंकृताः। पिछली बार जब क्लास दिया था अलंकृताः, बहुत सुंदर सज के मंदिर में जाना चाहिए, उसका वर्णन किए थे। अभी भी इस श्लोक में भी 34वां श्लोक में वर्णन आता है, स्व अलंकृताः, बहुत सुंदर तरीके से अलंकार करके हुए गोप्यः, गोपियों ने क्या किया तो वो परिक्रमा करना शुरू किया। और कुछ गोपी कुछ बच्चे थे तो कुछ चल नहीं पाते थे, वो क्या किया, गोप्यः च कृष्ण वीर्याणि अन्यांस अन्युद्युक्तानि, अनेक अनेक वाद्य सामग्री इत्यादि लेके वो क्या किए, बड़े बड़े बैल के द्वारा, या बैलगाड़ी होता है, बैलगाड़ी में बैठे और क्या कर रहे थे, गोप्यस्य कृष्णवीर्याणि, गोप्यस्य कृष्णवीर्याणि गायन्त्यः, गायन्त्यः मतलब गाते हुए, कृष्ण की गुणों को गा रहे हैं, कृष्ण की वीर गाथा, यानी अलग अलग प्रकार के जिस प्रकार असुरों को उन्होंने नाश मारा, क्या क्या सुंदर सुंदर मधुर लीलाएं किया, उन सब लीलाओं को गोपियां गाने लगी। कुछ गोपियां चल रही थी, कुछ गोपियां बैलगाड़ी में बैठी थी, और कुछ गोपियां वाद्य सामग्री बजा रही थी, बजाते बजाते वो कृष्ण की लीलाओं को गा रही हैं। तो कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनको गान के रूप में रख के उसको गाना, ये एक वैदिक विधि है। जब दामोदर अष्टक या दामोदर का लीला शुरू हुआ, या भगवान ये जो दामोदर लीला को रचाए, उस समय भी वर्णन आता है कि यशोदा मैं जब सुबह उठ के उन्हें अपनी दास दासियों को अलग अलग कार्यों में लगा दिया, लगाने के बाद यशोदा ने क्या किया, स्वयं मंथन करने लगी, स्वयं दधि मंथनम मंथनो दधि, ऐसा वर्णन आता है। दधि को मंथन करते हुए क्या करने लगी, भगवान के जितने भी गुण हैं या उनकी जो लीलाएं हैं उन सबको गान करने लगी। तो ये गायनतः गान में विशेषता क्या है कि जल्दी याद हो जाता है, अगर कोई पोएम है जल्दी याद होता है, प्रोज याद नहीं होता है, कोई गीत है तो जल्दी याद हो जाता है। अगर आपको वही चीज को एक पैराग्राफ के रूप में लिख के दिया जाए, यानी गद्य लिख के गद्य के रूप में दिया जाए, एक गद्य होता है एक पद्य होता है संस्कृत भाषा में, जैसे जो श्लोक है ये पद्य है, इसका एक छंद होता है इत्यादि इत्यादि, लेकिन गद्य जो है पांचवा स्कंद में बहुत सारे गद्य प्राप्त होता है, उसको मुश्किल मुश्किल याद करना, क्यों, उसका कोई मीटर नहीं होता, उसको गा नहीं सकते। तो जिस किसको गाया जाता है उसको जल्दी हम याद कर सकते हैं, जल्दी याद करने की बात नहीं, लंबा समय तक याद रहता है, एक बार गाना या किसी ने याद कर लिया तो बहुत लंबा समय याद रहता है। और तीसरी बात यह है कि वो सुनने में और सुनाने में बहुत मधुर रहता है। इसलिए कृष्ण की लीलाओं को गाया जाता है। कृष्ण की लीलाओं का वर्णन जो है वो तो बात की बात है, लेकिन मूलतः कृष्ण की लीलाओं को गाना ये वैदिक विधि है। इससे तीन फायदा है, एक है जल्दी याद कर सकते हैं, दूसरा है लंबा समय तक याद रहता है, तीसरी बात यह है कि मधुर आस्वादन खुद का भी होता है, दूसरों को भी होता है, भगवान को होता ही है। तो ये तीन कारणों के लिए भगवान की लीलाएं भले ही स्टोरी है उसको गाया जाता है, उसको पद्य में रख के गाया जाता है। इसलिए कृष्ण वीर्याणी स द्विजाशिषः, अब देखिए द्विजाशिषः द्विज आशिषः मतलब द्विजों का आशीर्वाद। जैसे द्विज एकदम बिल्कुल, ऐसे पिछले श्लोक में हमने सुना, पिछली बार मैंने क्लास दिया था, ब्राह्मणों को बहुत खिला गया था, सबसे पहले ब्राह्मणों को खिलाया। जब ब्राह्मण का पेट संतुष्ट रहता है ना तो उसका एक ही काम रहता है, उनके मुख से एक ही चीज निकलता है, लोगों को आशीर्वाद निकलता है। इसलिए ब्राह्मणों को वैदिक सभ्यता में बहुत खिलाया जाता है, क्योंकि वो खा के बहुत संतुष्ट हो गए, मतलब अभी वो आशीर्वाद देना शुरू करते हैं। अभी ये ब्राह्मण अलग अलग प्रकार के वैदिक मंत्रों के द्वारा स्वस्ति वाचन उच्चारण कर रहे थे, अलग अलग वैदिक मंत्रों के द्वारा आशीर्वाद भी दे रहे थे। तो ये आशीर्वाद और गायनतः गोपियों का गान जो है, गोपियां तो सरल ब्रजभाषा में गाती होंगी या गाते भी होंगे तो संस्कृत में, सरल संस्कृत भाषा में गाती होंगी, लेकिन इधर द्विजा ब्राह्मण जो थे वो संस्कृत में आशीर्वाद दे रहे थे, सबको आशीर्वाद दे रहे थे, दो दिखाओं को आशीर्वाद दे रहे थे। ये आशीर्वाद और उनके भगवान के गुणगान गोपियों का, दोनों के बीच में बहुत सुंदर तालमेल था। ऐसा नहीं कहो एक एक धुन में गा रहे दूसरा दूसरे धुन में गा रहे, ऐसा नहीं था, दोनों के बीच में एक बहुत सुंदर तालमेल था। तो ये दृश्य आप देखिए कि गोवर्धन की परिक्रमा हो रही है, कुछ गोपियां अपने आप को बहुत सुंदर सजा के कुछ चल रही है, कुछ बैलगाड़ी में बैठी हैं और गोवर्धन पर्वत का परिक्रमा हो रही है, और आगे आगे ब्राह्मण लोग आशीर्वाद देते हुए, जो मिला उनको आशीर्वाद, बड़े प्रसन्न चित्त होते हुए वो सब परिक्रमा करना शुरू किया। देखिए ब्राह्मण का कार्य है आशीर्वाद देना, तो आशीर्वाद देना मतलब क्या है, लोगों की कल्याण के बारे में सोचना उनका एकमात्र कार्य है। तो लोगों का कल्याण जो सोचता है वो ब्राह्मण है, जो अपना कल्याण के बारे में सोचता है, अपना हित के बारे में सोचता है वो ब्राह्मण नहीं है, वो सोचता है कि मेरा गुणगान हो, क्षत्रिय सोचता है। वैश्य क्या सोचता है कि मेरे पास संतृप्ति आ जाए, सब पैसा मेरे पास होना चाहिए, और शूद्र सोचता है कि ये जगत में जो कुछ भी इंद्र तृप्ति है सब कुछ मेरा ही है, मुझे ये करना चाहिए और किसी को इंद्र तृप्ति करना नहीं चाहिए। तो ये ब्राह्मणों का स्वभाव होता है कि लोक कल्याण के लिए करते हैं, तो लोक कल्याण के लिए वो आशीर्वाद देने लगे। तो आगे वर्णन आ रहा है इस श्लोक में, तो कृष्ण ने ये चीज को देखा, देख के उनके मन में दो बातें याद आई। एक याद आया कि सबसे पहला कि समस्या आई थी, समस्या मतलब शंका आई थी किसके मन में, नंद महाराज के मन में। नंद महाराज जब कृष्ण को आते हुए देखा, कृष्ण बड़े बड़े बात बोल रहे थे कि क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, तो नंद महाराज ध्यान नहीं दिया था शुरुआत में। तब कृष्ण को याद आया, अच्छा मैंने ध्यान नहीं दिया था ना जब मैं बोला था मुझे बच्चा समझते हो, दिखा दो मैं कौन हूं। अभी दूसरी बात, अभी दूसरा आशंका नंद महाराज को यह हुआ कि अगर मैं इंद्र का पूजा छोड़ दूंगा तो क्या होगा, इंद्र हमारे ऊपर नाराज हो जाएंगे और हमको कुछ हमारे लिए बहुत गलत हो जाएगा, या नंद महाराज के अंदर डर था। तो ये दो चीजों को, ये दो शंकाओं को दूर करने के लिए, क्या एक मैं बच्चा नहीं हूं, दूसरा आपको इंद्र का पूजा करने ना छोड़ दिया इसकी वजह से इंद्र नाराज हो जाएंगे, इंद्र से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये दो कारणों की वजह से, एक ये बताने के लिए मैं बच्चा नहीं रहा भी, मैं बहुत बड़ा हूं, दूसरा क्या है आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं। तो ये दो चीज को साबित करने के लिए, पुष्ट करने के लिए, मैं बच्चा नहीं हूं और दूसरा आपको किसी से डरने के लिए आवश्यकता नहीं है, इसलिए कृष्ण ने क्या किया, कृष्णस्त्वन्यतमं रूपम, अन्यतमं रूपम, रूप रूप को धारण किया कृष्ण। कृष्ण क्या कौन सा रूप? अन्यतमम, बहुत सुंदर शब्द है। अन्य मतलब दूसरा, मतलब ये छोटा कृष्ण इसे इसके साथ साथ परिक्रमा कर रहे हैं, 7 साल का बालक वहां चल रहा है, सब बराबर है कि नहीं? हाँ, अभी बड़े बड़े गोप है, नंद महाराज का 90 साल का उम्र का उस समय में, और बड़े बड़े वृद्ध गोपियां, बड़े बड़े वृष्ठ सब थे, और सबको मैनेज कर रहे कृष्ण, सबका लाइन में खड़ा रहो, ऐसा करो, एकदम पूरा गोवर्धन फेस्टिवल का मैनेजमेंट 7 साल का बालक कर रहा है, 7 ईयर ओल्ड, और सब लोग देख रहे, सब उनको कृष्ण को देख के मोहित हो गए, और एक कृष्ण छोटा सा बालक इधर साथ साथ में जा रहा है। और क्या हुआ उसी समय? कृष्णस्तु तू शब्द के द्वारा सूचित किया जा रहा है, वही छोटा कृष्ण जो है और एक रूप धारण किया, अन्य मतलब और एक है। और वो रूप कैसा था? अन्य रूप, हाँ, वो रूप जो है अन्य रूपम, वो कैसा था? तमम। तमम मतलब इधर श्रेष्ठ नहीं बल्कि बड़ा, तमम का अर्थ इधर बड़ा। वैसे तो गुह्य गुह्यतर गुह्यतम, अन्य अन्यतर अन्यतम, लेकिन वो सुपरलेटिव में क्वालिटी में नहीं बल्कि क्वांटिटी में था। क्वांटिटी मतलब कृष्ण का ये जो स्वरूप था बहुत बड़ा रूप धारण किया कृष्ण ने। कृष्णस्तु अन्य तमम रूप, मतलब इतना बड़ा सा रूप धारण किया। को गोप विश्रम्भरम गतः, गोप विश्रम विश्रम्भरम गतः, तो क्यों? गोपों के मन में विश्रम्भरम गतः, उनके मन में ये साबित करने के लिए, देखो अभी आपको कोई चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे ऊपर विश्वास करो, मैं हर प्रकार की कठिनाइयों से आपको दूर करूंगा। अभी कृष्ण को मालूम था कठिनाई आने वाला है, क्योंकि इंद्र क्रोधित होकर बारिश भेजने वाला उसको मालूम है, कृष्ण को मालूम है, इसलिए गोप बड़े बड़े गोप लोग थे, विश्रम्भरम गतः शैलोस्मी भ्रुवम भूरी। अचानक सारे गोपों ने देखा कि क्या हो क्या रहा है, ये गोवर्धन के ऊपर एक बड़ा सा एक रूप विचार विशाल रूप क्या है ये जैसे परिक्रमा कर रहे थे उसी समय अचानक गोवर्धन का दर्शन किया तो क्या हुआ, गोवर्धन जितना लंबा जितना चौड़ा उसके ऊपर एक बड़ा सा मुख दिखाई पड़ा उनको, इतना बड़ा मुख दिखाई पड़ा, वो कौन है क्या है ये बात समझ में नहीं आ रहा था उनको। तब अचानक से कृष्ण ने क्या कहा, शैलोस्मी इति भ्रुवम भूरी, शैलोस्मी इति भ्रुवम, भ्रुवम मतलब कहा, कृष्ण ने स्वयं कहा। और कौन सा कृष्ण ने कहा? दोनों कृष्ण साथ में कहने लगे, ये कृष्ण परिक्रमा करने वाला है वो छोटा सा कृष्ण 7 साल का वही स्वरूप है, और दूसरा जो कृष्ण है जो गोवर्धन का रूप बड़ा सा धारण किया है, तो उन्होंने भी कहा, क्या कहा, शैलोस्मी मैं गोवर्धन हूं, मैं गोवर्धन हूं, दो बहुत बार कहने लगे। और भूरी भूरी बलिम आदात बृहत्वपुः, बृहत्वपुः एक बड़ा सा रूप धारण करके उन्होंने क्या किया, बलिम आदात भूरी बलिम आदात, भूरी बलिम मतलब क्या है, जितना भी बलि मतलब इधर बलि मतलब भोग, जैसे हम हमारी भाषा हम भोग शब्द को समझते हैं, इधर बलि भी भोग दोनों एक ही है, तो जब इतना सारा भोग लगाया गया था तो क्या किया, आदत आदत उन्हें स्वीकार कर लिया, कैसे स्वीकार किया, बृहत तत्वहु। तो ये जो भगवान का ये जो दिव्य स्वरूप है, एक जो 7 साल का बालक के रूप में साथ साथ में घूम रहे हैं, और उसी साथ में ये बड़ा सा बृहद रूपम अन्यतरम रूपम, ये ऐसा गोवर्धन जितना भी लंबा कितना भी छोड़ा, गोवर्धन के ऊपर और एक गोवर्धन ऐसा लग रहा था, इसके द्वारा क्या किया, सारे ब्रजवासियों को विश्वास दिलाया। देखो आपको ऐसा लगता है कि अगर गोवर्धन का परिक्रमा करेंगे, क्या ये पर्वत है, पर्वत की परिक्रमा करने की आवश्यकता है, पत्थर है ये क्या है, ये बच्चा बोल रहा है, ठीक है हम कर रहे हैं, अगर कोई सोचे गलत कर रहे हैं हम, गोवर्धन एक ऐसे और एक पर्वत नहीं है, वो साक्षात मैं ही हूं। इसलिए उन्होंने कहा कि अस्मी शैलोस्मी शैलोस्मी इति इति शब्द के द्वारा कहा, नहीं इसके अलावा क्वेश्चन नहीं है, मैं ही वही गोवर्धन हूं, मैं ही पर्वत हूं, इसका विश्वास श्री कृष्ण ने सबको दिलाया। तो प्रश्न आता है शैलोस्मी, मैं गोवर्धन हूं, ऐसे कैसे भाई? हमने सुना कि गोवर्धन जो है हरिदास वर्य, गोपियों ने कहा, श्रीमती राधा रानी स्वयं ने कहा कि गोवर्धन जो है हरिदास वर्य, हरि के दासों में सर्वश्रेष्ठ है गोवर्धन, हमने इस बात को सुना। अब इधर कृष्ण क्या कह रहे हैं कि मैं स्वयं गोवर्धन हूं, तो इसका अर्थ क्या है? तो श्री विश्वनाथ शुक्ल ठाकुर वर्णन करते हैं कि शैलोस्मी शब्द करते हैं कि मैं ये गोवर्धन का जो इलाका है ना, ये पूरा इलाके का या पर्वत का मैं अधिष्ठान देव हूं। वैसे प्रत्येक वस्तु होता है इस जगत में, प्रत्येक हमारा शरीर का अंग होता है उसका अधिष्ठान देवी या देवता होता है। तो गोवर्धन का अधिष्ठान देवी कौन है? अगर कोई कहे कृष्ण कहा मैं स्वयं हूं, तो उन्होंने कहा कि तब पूछ सकते हैं कि अभी क्यों प्रकट हुए, हम गोवर्धन को पर्वत के रूप में इतने सालों से देख रहे हैं, अचानक से आप प्रकट क्यों हो गए, पहले दिखाई नहीं पड़ा? तो कोई कहे कृष्ण कहा देखो अभी तक गोवर्धन के प्रति आपकी भक्ति नहीं थी, अभी जैसे आपने परिक्रमा करना शुरू किया तो मैं प्रकट हो गया, मैं अपना स्वरूप को दिखाया। जब कोई वस्तु के प्रति भक्ति उत्पन्न होती है या कोई हृदय में भक्ति रहता है, तब उस चीज या उस व्यक्ति या उस वस्तु के प्रति या वो कोई देश के प्रति या प्रदेश के प्रति या पर्वत के प्रति जो भक्ति है, उस भक्ति के द्वारा उसके अधिष्ठात देवी या देवता प्रकट होते हैं। ये वैदिक सभ्यता में ऐसी थी। लोग कभी कभी पूछते हैं गाड़ी, मतलब गाड़ी का पूजा क्यों करते हो भाई? तो ये गाड़ी भी एक वस्तु है, वो तो लोहे से बना हुआ है, स्थूल रूप में देखा जाए तो लोहे से बना हुआ है, गाड़ी है तो मशीनरी है नहीं, उसको नियंत्रण करने वाला एक देवी या देवता होता है। तो जब उसका पूजा किया जाता है, इसका अर्थ है इसकी उसका जो नियंत्रण करने वाला देवी देवता अधिष्ठात देवी या अधिष्ठात देवता है उसकी पूजा की जा रही है। इसलिए पाश्चात्य देश के लोग जो है या आधुनिक युग के लोग जिसका मति जड़ हो चुका है, इस बात को नहीं समझ पाते। एवरीथिंग इज ए पर्सन। अभी दशहरे का समय में दक्षिण भारत में जितने भी लोहे से बना हुआ जो इंस्ट्रूमेंट्स होता है उसका पूजा करते हैं। तो कोई कहे ये इंस्ट्रूमेंट को क्या पूजा करे, लोहे से बना हुआ है, इसको पूजा तो नहीं होता है, भगवान का पूजा करो करना है तो नहीं। तो इस वस्तु का अधिष्ठात देव या देवती होता है, देवता होता है, उसको पूजा किया जाता है। कुछ दिन पहले एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि आपकी दवाई है जो है 15 दिन के बाद मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। मतलब क्यों? क्योंकि अभी समय नहीं है, वो जो जड़ बूटी है उसको निकालने का समय जो मुहूर्त है बाद में आएगा। मैंने कहा क्या मुहूर्त है भाई, क्या करते हो आप? तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको मालूम नहीं, जब भी वो जड़ी बूटी को हम निकालते हैं, हम उसको पूजा करते हैं, जो वो देवता होते हैं उस जड़ी बूटी का, उसका पूजा करके मुहूर्त देख के उनको संतुष्ट करके हम निकालते हैं। अब देखिए एक ऐसी छोटी सी पौधे को निकालना, उसके पीछे कितना गहरा विज्ञान है। तो बात इसलिए कहा जा रहा है इधर, क्योंकि गजवासी ने इस प्रकार कहा कि अरे ये तो गोवर्धन पत्थर से बना हुआ, इसका क्यों परिक्रमा करा रहे हो हमको? नहीं, कृष्ण ने कहा कि मैं शैल हूं, मैं इसका अधिष्ठात देव हूं। कभी कभी अधिष्ठात देव, जैसे हम सूर्य कहते हैं, सूर्य को जैसे आप सूर्य को देख के बोले सूर्य है, जब आप किसको बोल रहे हो सूर्य है, आप उसके अधिष्ठात देवताओं को संबोधित कर रहे हो। भले आपके सामने प्रकट नहीं है सूर्य नारायण, लेकिन वो जो वस्तु सूर्य है उसको सूर्य देवता के रूप में ही मानते हो। इसलिए वो सूर्य ग्रह और सूर्य को अधिष्ठात देव, वो दोनों अलग है। अलग होने पर भी सूर्य देवता को सूर्य बोलना और सूर्य को सूर्य देवता बोलने में कोई दोष नहीं है। उसी प्रकार इधर गोवर्धन जो है ऐसा दिखाई पड़ता है पत्थर है, लेकिन कृष्ण स्वयं है। इस बात को कहने के लिए उन्होंने कहा कि मैं इसका अधिष्ठात देव हूं। तो बीइंग क्यों प्रकट हुआ? अभी मैं आपके सामने इसलिए प्रकट हुआ हूं क्योंकि आपकी ये जो भक्ति है वो देख के प्रकट हुआ हूं। इसलिए हम भक्ति जितना हमारे हृदय में प्रकट होता है उतना भगवान हमको हमारे सामने प्रकाशित होते हैं। तब ब्रजवासियों ने पूछा ठीक है, अभी क्यों प्रकट हुए हो? ठीक है, आपने आप प्रकट हुए अभी, अभी प्रकट इसलिए हुए क्योंकि हमारे अंदर भक्ति देखा, क्योंकि परिक्रमा करना शुरू किया, परिक्रमा कर रहे इसलिए मैं प्रकट हुआ। तो क्या उद्देश्य है प्रकट होने के पीछे? तब कृष्ण ने कहा उद्देश्य ये है कि मैंने क्या क्या है, आप इतना सारा भोग लाए हो, ये 7 साल का बालक के रूप में मैं कैसे खाऊंगा उसको, इसलिए मैंने ऐसा विशाल रूप धारण किया। इसे शब्द आया बलिम मादात, बलिम मतलब जितना भी भोग है उन सबको स्वीकार करना है। अभी 7 साल का बालक के सामने कितना खाएगा बोलो, 1 प्लेट खाएगा, 10 चपाती खाएगा, उससे ज्यादा नहीं खा सकता। अभी आप इतना सारा भोग लगाए हो तो खाएगा कौन, तो मैं ही खा सकता हूं, इसलिए बलिन मादात, ये सारे जितने भी बलि हैं आपने जो दिया है वो सबको स्वीकार करने के लिए मैंने उस प्रकार का उचित रूप को धारण किया है। अभी ये बलि कहां लगाया गया था, अभी उसका वर्णन आचार्य ने कहा कि गोवर्धन के सामने बड़े बड़े खुदाई करके बड़े बड़े जमीन के अंदर ही वो एक कुआं जैसा, जैसे एक तालाब जैसा बनाया था, उसके अंदर दाल भरा गया था, एक जगह चावल भराया गया था। एक ऐसा था गोवर्धन के सामने, छोटे छोटे गोवर्धन थे, मालपुआ के लड्डू के गोवर्धन थे, इतने सारे थे। और ये जो हम बोलते ने अन्योर गांव, अन्योर में तो भगवान ने कहा था, गोवर्धन ने कहा था अन्योर और लाओ और लाओ, ऐसा नहीं कि गोवर्धन की तलेटी पे ही भोग लगाया गया था। ऐसा वर्णन किया गया है कि पूरा गोवर्धन से लेके नंदगांव तक गोवर्धन का महाप्रसाद का प्लेट था। नंदगांव कहाँ, कम से कम 20 किलोमीटर दूर है। और कुछ ऐसे गांव थे जहां वो गांव में ही लोगों को लेके नहीं आना पड़ता था, गांव में बड़ा बड़ा पहाड़ पहाड़ जैसा रईस वगैरह सब बना के रखे थे और मन ही मन में लोगों ने गोवर्धन को अर्पण किया। कुछ लोग मेडिटेशन में अपने अपने मन ही मन में और लोगों को उन्होंने भगवान को अर्पण किया। तो ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है इतना बड़ा मुख है तो खा जाएंगे, इतने सारे चीजों को लेके खाना तो पड़ेगा ना, बड़ा मुख है तो ठीक है चबा के खा जाएंगे, लेकिन एक साथ में सब कैसे गायब हो गया? जैसे भोग लगा के सब गायब हो जाता था, एक साथ में कैसे गायब हो गया? तब उन्हें कहा कि भगवान मेरा हजारों हजारों हाथ है, कुछ लंबे हैं कुछ छोटे हैं। मान लो कोई पूछे अगर बहुत लंबा हाथ है तो इधर नजदीक में कैसे खा सकता है बताओ, मान लो आपका इतना बड़ा हाथ है नजदीक में कोई चीज खा सकते हो, नहीं खा सकते हो, हजारों हजारों हाथ है। और कुछ कैसे था, बहुत लंबा हाथ था कुछ छोटा हाथ था, हर दिशा में कोई कहे आपके अगर कोई पीछे भोग लगाए तो क्या करेंगे, नहीं पीछे ही जो भोग लगा था उसको भी खाने वाला एक ऐसे हाथ था। तो ये कृष्ण इतना क्यों खाया, क्या अपना आनंद उठाने के लिए, अपने आनंद में आनंद होने के लिए, खुद सुखी होने के लिए? नहीं। तो कृष्ण इतना सारा भोग जहां जहां लोगों ने अर्पण किया खाया, क्यों? क्योंकि लोगों को सुखी करने के लिए, लोगों को सुखी करने के लिए। देखिए भगवान को आप जितना भोग बनाओगे और जितना भोग लगाओगे ये समझना चाहिए हमारा सुख है। ये गोवर्धन लीला का बहुत महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन है। ठीक है इंद्र की पूजा नहीं करना चाहिए, कृष्ण की पूजा करना चाहिए, वो सब भक्त जानते हैं, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण एक इंस्ट्रक्शन ये है, आप जितना भगवान को जितना भोग लगाओगे इतना हमारा सुख है। द मोर कृष्ण ईट्स, देखिए जब भगवान भोग स्वीकार करते हैं तो भी उसमें संतुष्टि है हमारे, जब हम भोग लगाते हैं उसको रिजेक्ट करते हैं ना तो उसमें भी हमारा सुख है। जब कोई आप कृष्ण को अर्पण करते हो, ये कृष्ण एक बच्चा है समझ लो, भगवान को भोग लगाते ना ये बच्चे को, भोग बच्चे को खिलाने के बाद बराबर है। आप सब माताएं जानते हैं कि जब बच्चा आपका जन्म हुआ उस समय जब थोड़ा बड़ा होने के बाद उसको खिलाना कितना मुश्किल है, उधर भागता है इधर भागता है कि नहीं, और उसके सामने कुछ रखोगे एक चीज देगा दूसरा चीज नहीं लेगा, ठीक है, एक चीज देगा दूसरा चीज नहीं लेगा, कभी कोई चीज बोलेगा ये खाऊंगा, वो मम्मी बनाएगी, बनाने के बाद बोलेगा नहीं खाना है, क्या है कि नहीं, जब एक मल मूत्र से बना हुआ शरीर का बच्चा जो है, जिसका इतना कोई इतना अंश मात्र है कृष्ण का, वो इतना नकरा कर सकता है, कृष्ण कितना नकरा नहीं करें बताओ, उसका नकरा कोई हद ही नहीं है। तो वैसे जो कृष्ण है उनको खिलाना आसान काम नहीं है। आप इतना सारा भोग बनोगे, बोला बस ये खाओ जा, बाकी सब बोले क्यों ये नहीं क्यों कर, रिजेक्ट कर दिया। देखिए कृष्ण का जो रिजेक्ट भी चीज होता है ना, इसको अवशेष कहा जाता है, वो भी प्रसाद है। कृष्ण का महाप्रसाद दो प्रकार का होता है, एक उच्चिष्ट होता है, एक होता है अवशेष। उच्चिष्ट मतलब क्या है, आधा खाया आधा छोड़ दिया, उसको उच्चिष्ट कहा गया है। और कृष्ण को आपने अर्पण किया, उन्होंने बोला बराबर नहीं, जाओ लेके जाओ, उसको क्या बोला जाता है, अवशेष। अवशेष मतलब अर्पण किया था खाया नहीं, लेकिन वो भी महाप्रसाद है। कृष्ण का जो रिजेक्ट चीज होता है ना, वो भी हमको शुद्ध करने वाला है, तो एक्सेप्टेड चीज जितना शुद्ध करने वाला है। तो व्रजवासियों की भक्ति इतना महान था, कृष्ण क्या कि अचानक से सब कुछ खा लिया, और क्या क्या ये करने के द्वारा उन सबको आनंद प्रदान किया। जब आप कृष्ण को अर्पण करते हो तो वो जब उसको रिजेक्ट करते हैं तो भी हमारी शुद्धिकरण होता है, जब उसको स्वीकार करते तो कितना शुद्धिकरण होता है, कितना आनंद आता है। तो कृष्ण ने सारे व्रजवासियों को इस प्रकार का दिव्य आनंद प्रदान किया। जब आनंद प्रदान किया, दिव्य आनंद प्रदान किया, कृष्ण ने क्या कहा बाद में, ऐसा वर्णन आता है कि तो ही ऑफर्ड बेनेडिक्शंस, बेनेडिक्शंस मतलब आप जो चाहे वो मांगो। अभी खा लिया, खाने के बाद क्या करेंगे बताओ, खाने के बाद संतुष्ट हो गए, संतुष्ट होने में पूछा कि आपको जो चाहिए बोलो, मैं देने के लिए तैयार हूं। तो गोवर्धन ऐसा कृष्ण का एक स्वरूप है जो खा के संतुष्ट हुआ है, जो खा के संतुष्ट हुआ है। एक बार एक व्यक्ति जब एकदम बल पेड़ खा जाता है ना, वह संतुष्ट होता है ना, उस समय उनको जो चीज बोलो वो हाँ बोलता है, ना उनके मुख से निकलता ही नहीं है, ना उनके मुख से कभी निकलता ही नहीं है। अगर पेट पूजा बराबर हो जाता है, ये समझ लो उनका इतना प्रसन्नता रहता है मन में, तो उनको मुख से नहीं करके शब्द निकलता नहीं है। तो ये गोवर्धन का विशेषता है। जैसे पिछली बार भी इसके बारे में हम बात कह रहे थे कि अभी भी इतना साल हो गया, इतना पीढ़ी निकल गया, लेकिन अनेकों परिवार अभी भी हर महीना गोवर्धन परिक्रमा करने जाते, कोई पूर्णिमा करने जाता, कोई अमावस्या करने जाता है। उनको कोई ऐसा कोई प्रचार करने वाला नहीं है, देखो भक्ति करना चाहिए, कृष्ण भगवान है, कोई प्रचार करने का वाला नहीं है। लेकिन फिर भी उनकी परंपरा से ऐसी चल रही है, इतनी पीढ़ियों से चलती आ रही है, वो बस ट्रेन में जाते परिक्रमा करके आ गया, परिक्रमा करके आ गया। ये क्यों है, इसकी विशेषता क्या है? क्योंकि उनके मन में एक दृढ़ विश्वास है, अगर मैं गोवर्धन को खिलाऊंगा वो प्रसन्न हो जाए और परिक्रमा कर ले, मैं जो मांगूंगा वो देंगे, मैं जो मांगूंगा वो देंगे, मेरे मन में जो इच्छा है वो पूर्ण होगा। भौतिकवादी भक्त तो भौतिक चीज मांगते हैं, लेकिन शुद्ध भक्त तो कृष्ण प्रेम मांगते हैं, लेकिन जो मांगा गोवर्धन देते हैं। इससे गोवर्धन परिक्रमा जो है ये इतना प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि पूरा व्रज में केवल शुद्ध भक्तों का ही स्थान है। आपको केवल कृष्ण प्रेम मांगेंगे तो उसी उसी के लिए स्थान है, लेकिन गोवर्धन ऐसा जगह है वो सबके लिए स्थान है, और खिलाओ परिक्रमा करो जो इच्छा पूरा हो जाए। इसलिए भौतिकवादी भक्तों के लिए गोवर्धन स्थान है, कृष्ण प्रेम जो चाहते उनके लिए गोवर्धन स्थान है। ऐसा कोई चीज नहीं जो गोवर्धन नहीं दे सकते या देते नहीं है। क्या भोग लगाओ, परिक्रमा करो, इससे सरल क्या चीज बताओ। वेदों में अनेकों अनेकों व्रतों को वर्णन किया गया है, इसलिए एक व्रजवासी से हम चर्चा कर रहे थे तो ने कहा कि देखो व्रज में ऐसा कोई जगह नहीं है जहां आपकी बौद्धिक इच्छा पूर्ण करने के लिए स्थान है। अगर बौद्धिक इच्छा पूर्ण करने के लिए कहीं व्रज में इधर करोगे, बड़ा अपराध माना जाता है, आपके जो भक्ति है वो उसमें बहुत सारा समस्या आ सकती है, अगर ये भौतिक इच्छा के साथ अगर व्रज में भजन करोगे तो। लेकिन एक ही जगह है व्रज में वो ऐसा किया जा सकता है, तो कौन सा जगह है? गोवर्धन। इसलिए आप देखो पब्लिक भर भर के आती है, आप देखो पब्लिक भर भर के आती है। आपने देखा है कि कहीं इमली तला में पब्लिक भर भर के जाती है? नहीं, कोई नहीं जाता है। आपने देखा है कि भगवान की जो राजस्थली है वंशीवट में, इतना पब्लिक नहीं जाता, जाता है दर्शन करके आ जाता है, लेकिन कोई ऐसे भाव के साथ परिक्रमा करना वो सब चीजें केवल गोवर्धन के साथ में है। क्यों? क्योंकि वो सारे प्रकार की जो इच्छाएं हैं उसको पूर्ण करते हैं। इसलिए श्री रूप गोस्वामी पाद गोवर्धन अष्टकम को रचना करते हुए जो दो अष्टकम को रचना की, प्रथमम गोवर्धन अष्टकम, उसमें वैसे तो आठ श्लोक है, मैं केवल एक ही श्लोक सुनाऊंगा जिसके अंदर कहते हैं गोविंदास ज्योतिस्मित वंशी क्वणितोद्दल। हाँ हाँ, गोविंदास्य उतमसित, गोविंद जो है उनका मुख सजाया हुआ है, बहुत सुंदर तरीके से सजा हुआ है, और उनकी हाथ में जो वेणु है, और ये वेणु का आवाज सुनते हुए तो क्या हो रहा है, लास्य उत्कंठ मत्त मयूर व्रज व्रजवीता, लास्योत्कंठ मत्त मयूर व्रजवीता। लास्योत्कंठ मतलब जितने भी मयूर हैं उत्कंठता से नाचने लगे। कैसे नाचने लगे? जैसे मधुमत हो चुका हो, कृष्ण की बांसुरी से जो मधुर आवाज निकल रही है वो ऐसा एक एक मदिरा जैसा था, सारे जितने भी मयूर है वो मत होके नाचने लगे। राधा कुंडोत्तंग तरंगांगुदिरंगा, तो राधा कुंड के तट में या गोवर्धन है, उनके तरंगों से पूरा गोवर्धन इतना सुंदर सजाया हुआ है कि गोवर्धन सुशोभित हो रहा है। किससे? राधा कुंड के तट में रहते हुए उनके तरंगों से सुशोभित हो रहा है। वैसे गोवर्धन के विषय में मेरा एक प्रार्थना है। रूप गोस्वामी पाद कहते हैं प्रत्याशा में तम गुरु गोवर्धनम पूर्णाम प्रत्याशाम में, तो शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने प्रत्याशाम, प्रत्य मतलब प्रत्येक, आशा मतलब आशा, में मतलब मेरा, त्वम आप क्या करो, कुरु उस मेरी आशा को पूरा करो, गोवर्धन पूर्णाम मेरी आशा को पूर्ण करो, ऐसा करके रूप गोस्वामी पाद गोवर्धन से ऐसी प्रार्थना करते हैं। तो अभी हमारा ये गोवर्धन लीला चल रही है और मंदिर का निर्माण का कार्य भी अभी पूर्ण होने जा रहा है, तो सब भक्तों के अंदर बहुत सारे आशा जो इतने सालों से है वो भगवान ने पूर्ण करने वाले हैं। हमारी जो फेस्टिवल है बहुत अच्छा हो जाए और हमारा जो मंदिर का जो निर्माण है वो भी जल्दी से जल्दी अच्छी तरीके से हो जाए, एक महीना डेढ़ महीना जो बाकी है उसमें हो जाए इस प्रकार की, और उसको पूर्ण करने के लिए जो भी धन की आवश्यकता है वो भी जल्दी से जल्दी भक्त लोग इकट्ठा करें। इस प्रकार की आशाओं को हम गोवर्धन के सामने रखते हुए, गिरधारी के सामने रखते हुए हम प्रार्थना जरूर कर सकते हैं। वैसे तो मुझे ये चाहिए वो चाहिए वो प्रार्थना भी करने वाले हैं, लेकिन वो सारे प्रार्थना जो थोड़ा सा साइड में रखी है, वो अगर कुछ बौद्धिक प्रार्थना है तो बाद में कर सकते हैं, उसका कोई वो इंतजार कर सकता है। तो हमारी जो आध्यात्मिक जो प्रार्थना है उसको जो एकदम अर्जेंट प्रार्थना है, तो प्रत्याशाम में त्वम कुरु गोवर्धन पूर्णाम, ये लाइन के द्वारा एंड होने वाले ये जो गोवर्धन अष्टकम है ये पूरा आने का आदर्श है, तो कम से कम गोवर्धन का स्मरण करते हुए ये प्रार्थना जरूर कर सकते हैं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति ध्यान रखिएगा, जब जैसे घरों में भी माताओं को मालूम है पति को एकदम भरपूर अच्छा बना के खिलाया, एकदम प्रसन्न होके बैठे तब निकलता है, ऐसा चाहिए तब हाँ हो जाता है, बिना खिलाए मांगेंगे तो नहीं मिलने वाला है, वो एकदम बिल्कुल बराबर खिला के जब मांगोगे तो निश्चित रूप में हो जाता है। तो ये भगवान का भी स्वभाव है, ऐसा गोवर्धन का स्वभाव है, तो बुरा अनेक प्रकार के भोग बना के खिलाना चाहिए। जैसे मंदिर के ओपनिंग के समय अलग अलग प्रकार के भोग एक तो भगवान को भी लगेगा, वैष्णव को लगेगा, महाप्रसाद जो है अलग अलग प्रकार के जो व्यंजन है वन के जितना लोगों के खिलाओगे, जैसे जितना भगवान को खिलाओगे उतना प्रसन्न, जितना प्रसन्न उतनी इच्छा पूर्ण, सरल तरीका इच्छा पूर्ण करने की। ठीक है, हरे कृष्णा।